ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे आज आप जानते हैं तिथि है एक महान गौर पार्षद काली कृष्णदास की, तो भागवत दो प्रकार का है, एक व्यक्ति भागवत एक ग्रंथ भागवत। तो भागवत सेवया ग्रंथ भागवत की सेवा कर सकते हैं या व्यक्ति भागवत की सेवा कर सकते हैं, दोनों ही भागवत सेवा। तो कभी कभी व्यक्ति भागवत का भी सेवा का सुयोग प्राप्त होता है। तो आज ऐसे एक महाभागवत श्री काला कृष्णदास, उनके बारे में थोड़ा आलोचना करेंगे, क्योंकि ऐसे कभी कभी हम देखते हैं भगवान के बारे में बोलने से सुनने से जितने भक्ति में प्रगति होता है, जितने मन में भाव आता है, उससे कई गुना ज़्यादा भाव आता है, भक्ति प्रकट होता है, अगर भगवान के भक्तों की चरित्र को आप सुनते बोलते हैं, है ना? नहीं आप सब अनुभव किए ना? नहीं क्यों? क्योंकि भगवान हम तो कभी बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, लेकिन भक्त तो हमारे जैसे है ना, दो हाथ दो पैर वाले, बोले अरे वो ऐसा क्या हम क्यों नहीं कर सकते यार, तो मन में एक आशा रहेगा, वो तो निराशा है, वो तो सोच भी नहीं सकते, तो इसलिए आशा के बारे में कुछ। तो इस प्रकार एक महाभागवत काली कृष्णदास, यद्यपि उन्होंने नित्य पार्षद है, भगवान कृष्ण के वृंदावन लीला में द्वादश गोपाल में से एक थे, उनका नाम था लवंग सखा। भगवान के जो गोप सखाएं थे उनमें से एक थे जिनका नाम था लवंग सखा। तो उन्होंने गौर लीला में काली कृष्णदास नाम लेकर आए भगवान के, कृष्ण के पार्षद। जब भगवान कृष्ण ने भक्त बन कर के आए तो उनके निजजन भी सब उनसे और पावरफुल भक्त बन कर के आए। ऐसे ऐसे भगवान तो सब कुछ सिखाते हैं, आपने आचरित धर्म परे सिखाए और अपना लोग है उनको भी ऐसे ऐसे आचरण करवाते हैं। और काली कृष्णदास ओहो ऐसे अद्भुत भक्त हैं, उनके बारे में क्या कहूँ, पीछे से कहते हैं आगे से क्या कहें। एक बार जब महाप्रभु संन्यास के बाद नीलाचल में निवास कर रहे थे, तो हर एक साल चतुर्मास के बाद, चतुर्मास से पहले ही वो बंगाल से भक्त लोग सब जाते थे और चार महीना पुरी में रुकते थे, चार महीने रुकते थे, रथ यात्रा आदि देखते थे, महाप्रभु के साथ मिलन कर फिर आते थे। तो उसी में एक बार एक गोष्ठी के साथ काली कृष्णदास गए थे। तो जो महाप्रभु पुरी में रहते थे उनका दिनचर्या था, सुबह उठ करके अपने प्रातः कृत्य करने के बाद श्री जगन्नाथ मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए। और क्योंकि महाप्रभु तो देखने में साक्षात कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, इतने तक तक गोरे 7.5 फीट हाइट, आकर्ण लोचन, आजान लंबित भुजो कनकावदातु, ऐसे ही आकर्षक रूप था उनका, तो कोई भी पब्लिक देखता था वो तो आता था चरण पकड़ने के लिए, देखने के लिए आ जाता था। और महाप्रभु जब भीड़ आता था, भीड़ मंदिर में जाकर उनके पास आ जाता था, तो इसलिए महाप्रभु चलने में दिक्कत होता था, महाप्रभु नहीं चाहते थे कि पब्लिक मध्य से वो आकर ऐसे करें। तो इसलिए अब तभी जो आज सीना पानी धोने का पैर धोने का सब व्यवस्था हो गया, तभी ये सब था नहीं। तो महाप्रभु के जो सेवक गोविंद थे वो एक जल पात्र लोटा में पानी लेकर चलते थे कि महाप्रभु मंदिर से भीतर बढ़ा में जाने से पहले महाप्रभु प्रदपख्यालन करते, पैर धोते थे फिर मंदिर में जाते थे, ये नियम महाप्रभु करते, जल पात्र लेके जाते थे, सेवक लेके जाता, लेकिन सेवक जल पात्र लेता, लेकिन लोग इतने पब्लिक भीड़ आते थे चलना मुश्किल होता। तो महाप्रभु के एक दूसरे सेवक थे जिनका नाम था काशीश्वर पंडित, वो बड़े हट्टे कट्टे थे देखने के लिए, महाप्रभु उनको फ्रंट लाइन में रखते थे बड़ी गार्ड के रूप में, बोले आप आगे रहो, पब्लिक को आने नहीं देना, रोकना। तो बड़े तागड़े लंबे चौड़े थे वो, सब दूर दूर सबको दूर करते थे। तो महाप्रभु आसान से चल के जाते थे, वो प्रोटोकॉल में चलते थे आगे। तो और अनेक लोग महाप्रभु के पार्षद तो 10 सन्यासी तो उनके साथ ही थे, वो जाते थे। और जितने पारिषद जो बंगाल की भक्त लोग पहुंचते हैं सकड़ो, वो सारे प्रभु के साथ जाएंगे दर्शन, है ना, वो चांस कब मिलेगा, सब उनके साथ आते थे, सकड़ो हजारों भक्त साथ चलते थे और पब्लिक तो उनके साथ देख करके और जुट जाते थे। अब महाप्रभु देखने ऐसे है, इतने स्तुत्य कौन नहीं चाहेगा महाप्रभु, लेकिन महाप्रभु आकट नियम कर दिया उनके भक्त लोग का, सभी चरण छूना चाहे, महाप्रभु बोले देखो मेरा चरण के छुएगा उस दिन में प्रसाद नहीं खाऊंगा, फास्टिंग करूंगा। तो डर के मारे बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं चाहते, हम तो लेकर आए, हम कुछ खिलाएंगे, आप ऐसे ही संन्यास धर्म लेकर बड़े कठिन व्रत धारण कर रहे हो, नहीं 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 हम छुएंगे नहीं, हम दूर रहते हैं, हम दूर रहते हैं, आप प्रसाद पाओगे, हम फास्टिंग मत करो। तो सब डरते थे महाप्रभु के चरण के पास हाथ लेने में डरते, बोलते नहीं नहीं महाप्रभु उपवास करेंगे, तो उसे डरते थे। जब महाप्रभु के चरण छूने के लिए डरते थे, चरण धुली के बाद क्या, और जो चरण धोते थे डली और पानी, तो कोई दूर रहते थे, सब बोले ना किसी को जल स्पर्श कर लिया छू लिया तब तो फिर महाप्रभु गुस्सा हो जाएंगे, उपवास करेंगे। लेकिन इस बार जो काली कृष्ण गए थे वो घोर पब्लिक था, उच्छब दिन था, सब जाते थे हजार लोगों के बीच में, महाप्रभु गए वो पीछे पीछे जा रहा था, जब जलपात्र लेकर के गोविंद जा रहा था उनके साथ साथ जा रहा था, आगे नहीं जा रहा था, पीछे भी जा रहा था, पीछे भी जा रहा था। महाप्रभु वो घुमट पार किए, अब भीतरी बेढ़ा में प्रवेश करने से पहले उनके आगे पत्थर रहता है, उसमें महाप्रभु चरण रखते थे और गोविंद पानी ढालता था, चरण धोते थे, पैर धो करके दोनों पैर धोते थे फिर जाते। तो उन्होंने जैसे महाप्रभु चरण रखे पत्थर के ऊपर खड़े हो गए और गोविंद ने पानी डाला, वो पीछे पीछे जा रहा था गोविंद के साथ, बैठ गया महाप्रभु के पीछे चरण के नीचे, इसे हाथ करके इसे बैठ गया, सारे पब्लिक बाप रे बाप, ये बीच में बिल्कुल दूर इसे करके बैठा है, कैसे साहस, महाप्रभु देख रहे हैं मेरे पीछे मेरे चरण के नीचे इसे हाथ करके बैठा है, और गोविंद पानी डाल रहा है, महाप्रभु के चरण धो करके पानी गिर रहा है, पूरे पानी भरा अंजलि पिया, महाप्रभु देख रहे हैं, सारे पब्लिक देख रहे हैं, दोबारा पानी डाला दोबारा पिया, दो दूसरा पैर में डाला उसको पिया, तीन बार पी लिया, चौथे बार महाप्रभु बस हो गया, अब हो गया और नहीं है, बहुत हो गया सबके सामने, तीन बार पी लिया और क्या। लेकिन तीन बार सभी के सामने महाप्रभु के चरण धोन जल को पी लिया, महाप्रभु देखे कुछ नहीं किए, उनके सर में हाथ लगाए, जितने भक्त थे बंगाल के और पब्लिक सब विस्मित हो गए, बोले ये कैसे भाई, वो तो छूने भी नहीं देते थे, इतने गुस्सा करते थे, ये बहुत पब्लिक में इसे कैसे हुआ। अब सभी का मन में उसी समय भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने पूरा सभी के मन में चक्कर है, क्या क्या रहस्य हुई जी, ये हो है कौन भैया, इसी बार आया उन्होंने, बोले नहीं आया था, ये नया भगत है इसी बार आया है, कोई सीनियरिटी भी नहीं है, पहले नहीं आ रहा था, इसी बार आया, ये ईसा हम भी पहचानते नहीं उनको, महाप्रभु के चरण धोया पानी पब्लिक में इसे उठाकर तीन तीन बार पी लिया, हम तो छू नहीं सकते ड्रॉप, आश्चर्य से आप महाप्रभु दर्शन किए, उपल भोग दर्शन हुआ, गए हरिदास के यहाँ गए समझ, लेकिन वो तो सारे पब्लिक सारे भक्त के मन में तो महाविस्मय चक्कर चल रहा है, कोई चीज आपस में बातचीत सब चल रहा है, कोई तो है जरूर, कोई महाअद्भुत है, क्या है कौन है नहीं जानते, हम जानते हैं बंगाल से हमारा साथ ही आया था, लेकिन साथ में आया था उनके इतने महाप्रभु रोके नहीं टोके नहीं, क्यों नहीं, क्या है, किस कारण से, हम नहीं जानते, कोई भक्त नहीं जानते थे, सब जानते थे उनके घर बंगाल में है, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ है वहाँ है, तुम जानते, लेकिन ऐसा क्या हो कि महाप्रभु टोके नहीं पब्लिक में, उनके चरण जल पी लिया उन्होंने, वो हम लोग तो पास में भटकने नहीं देते इतने बड़े बड़े। तब शाम को सब जो गोष्ठी होता है महाप्रभु पास मिलते हैं, अब सारे भक्त पुरुष स्त्री मिल करके सभी का मन में वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन घूम रहा, महाप्रभु बोले क्या बात है, बस आप समझ रहे हैं अंतर्जामी है। अब सुबह से शाम तक हमारा मन में यही चल रहा है, अब शंका समाधान कीजिए, ये हुई जी। तो महाप्रभु आपने श्रीमुख कमल में उन भक्त के बारे में बताया, बैठा बोलने लगे, वही बैठा था लेकिन वो बिल्कुल लज्जित हो गया, मुंह नीचे करके लज्जित होकर बैठे, के उपाय नहीं जाने के लिए, सब बैठे गोष्ठी में बैठा है और क्लास से उठकर जा नहीं सकता, वो अवमानना है, जो आके बैठा है तो उठ के जा नहीं सकता, और जा नहीं सकता सारे उनके बारे में पूछ रहे हैं, महाप्रभु देखे वो सारे बोलने तो बोल देना चाहिए, वो क्या करे, सभी इतने चाहते हैं उनका जानने के लिए क्यों ऐसा आपने किए, आप तो कभी भी ऐसा बड़े रोष प्रकट करते हैं, आज तीन तीन बार आपका पानी पी लिया, बोले नहीं, और खुश होकर बोले बोले ठीक है ठीक है बस इतना ही, ये क्या है। तो महाप्रभु बोले तो जानते हैं बंगाल से, उनका नाम कालिया कृष्णदास है, लेकिन उनका जो अधिकार है भक्ति में ये आप लोग से पता नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है। बोले आप लोग उनके साथ नाम जानते हैं, मंगल उनका हृदय हम जानते हैं, रघुनाथ दास के खुड़ा है वो, खुड़ा मतलब उनका एक डिस्टेंट रिलेशन, पिताजी के भाई के भाई होंगे, भाई होंगे, क्योंकि खुड़ा मतलब जो आंटी के हस्बैंड, आंटी के हस्बैंड तो भाई होंगे ना, क्या अंकल होंगे, हाँ यही होंगे, रघुनाथ दास के खुड़ा थे। बोले हम जानते हैं वर्धमान, उनका घर सब जानते हैं, अच्छा है, लेकिन हम भी तो हैं, लेकिन उनका क्या हुआ कि ये पोजीशन क्यों दिए उनको। बोले उनको कभी आप देखे ना, कितने बार वैष्णव उत्सव होता है, इतने फेस्टिवल, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये वो कितने फेस्टिवल होता है, जन्मोत्सव, तिरुभावोत्सव, फेस्टिवल आता है, बिल्कुल आता है ना, क्या करता है, आगे सेवा करता है, प्रसाद परिवेषण करता है, वो तो हर जगह में एवरी डे कहीं भी भंडारा हो वो तो पहुंचते ही पहुंचते, हाँ कहीं ऐसा नहीं कि वो ना आए, पहले से नंबर वन में पहुंचते हैं और बकेट उठाकर परिवेषण करते हैं। बोले परिवेषण कर सब देखते हैं, जब हर फीस्ट में जाते तो खाता होगा, लेकिन कोई देखे आप लोग से बैठकर पत्तल में खाया, वो देखे नहीं, हम तो फर्स्ट बैच में बैठ जाते हैं, इसलिए सेकंड बैच हमको पता ही नहीं, क्योंकि जितने भक्त सब बोलते हैं आपने आपको सीनियर मानते थे, बोले हम फर्स्ट बैच में बैठते थे, और वो फर्स्ट बैच में नहीं बैठता था, सर्विस करता था, लेकिन सेकंड बैच से दबा कर खाता होगा, कोई फीस्ट ऐसे मिस नहीं किया हमने, हम कहाँ भी देखते हैं 20 किलोमीटर जाके पहुंचा इधर, अब पहुंच कर फर्स्ट बैच में सर्विस भी बैठता है, पता नहीं पता लगा कर रखा होगा, हम लोग जैसे सर्विस करते हैं, हम लोगों के भैया थोड़ा सर्विस कर दो, इच्छा तो नहीं सर्विस करने के लिए, बोलेंगे भैया थोड़ा कोई नहीं तो सर्विस कर दो, हाथ लगा दो, सर्विस करेंगे पहले से पत्तल लगा करके, उसमें अपने हिसाब से परिवेशन रख करके फिर करेंगे, शायद कोई कमी ना है ना, अपना पत्तल सेव है, उनको देखते नजर रखते होंगे, डालते होंगे अपना पत्तल, नजर भी रहता होगा किसे है, कोई हाथ नहीं लगाता। बोले उसी ने किसी ने देखा ना, नहीं, लेकिन निश्चित खाता होगा ना, खाता तो है, लेकिन कोई नहीं जानते आपने, लेकिन हरेक फीस्ट में जाता है जरूर, लेकिन कभी बैठ करके पत्तल में एक बार खाया ही नहीं, कभी नहीं खाया, अपना भोजन थाली है ही नहीं उनका, घर में भी नहीं खाता हो, हमेशा जाता है किसके यहाँ भंडारा खाने के लिए, जहाँ साधु संत का भंडारा होता है दूर दूर तक जाता है वहीं खाने के लिए, लेकिन कोई नहीं देखा कर बैठ में खाता, सबको बोलते हैं कि फर्स्ट बैच है, सेकंड बैच हो गया, अभी बैठ लो खा ना, बस मैं खा लूंगा, ये जो आए सब लास्ट बैच करके मैं खा लूंगा, लेकिन खुद कभी नहीं खाते थे, अंत तक नहीं खाते थे, परिवेषण कर सबको खिलाने के बाद चले जाते थे, सब पत्र उठा करके जहाँ डस्टबिन होता ना फेंकते, सब हाथों से चले चुपचाप जैसे सब चले गए खा पी करके, जा करके डस्टबिन के पास पहुंचते छिपे छिपे, और डस्टबिन से पत्तल उठा करके जो पत्तल में कोई कोई बच फेंक देते ना सब, हम तो लोभ में ले लेते हैं ज्यादा खा नहीं पाते, फेंक देते मुड़माड़ करके, तो उसको खोल खाल करके उनको रुपन चाट चूट करके सब खाते थे कई पत्तल से, क्योंकि जानते हैं ये भक्त है, किसी को मांगने से तो झूठन को देंगे नहीं, मांगने से देंगे नहीं भाई, आपका प्रसाद कोई राजी नहीं होंगे देने के, तो इसलिए बोले काई वो पंगा लूंगा कोई देंगे ही नहीं, अब उनका सामने किसके जाकर के मैं दिखावट नहीं करना चाहता हूँ, दे दो मैं छीन कर खाऊं, झूठा खाता हूँ, सबको देखो मैं झूठा खाने वाला हूँ, ऐसा नहीं करते थे, किसी मांगते भी नहीं थे, छीना झपटे कुछ नहीं करते थे, वो जानते थे परमिशन जहाँ जरूरत नहीं वही जाऊँ, जब उन्होंने उठा कर अपने पत्तल फेंक ही दिए फिर परमिशन क्या जरूरत है, फिर वो तो त्याग कर फेंक दिए, जब फेंक देने के बाद वो जाते थे, वो कुत्ता भी आकर चाटता था, कुत्ता के साथ वही उनके साथ पहुँच जाते थे, दो चार कुत्ता भी खाते थे उनके साथ, वो भी पहुँचते थे पत्तल उठा करके उसी से चाट चूट कर खाते थे, बस एवरी डे उनका वही भोजन हुआ कर, हर भंडारा में जहाँ कूड़ा कचड़ा फेंकते थे वही कुत्ते मुत्ते के साथ में वहीं जाकर सब चले वहीं उठाकर खाते थे, और किसी को पूछना जरूरत नहीं, जिनका जैसे वो परिवेषण करते समय थोड़ा ज़्यादा दे देते होंगे और नहीं खा पाए तो फेंक देते होंगे, और उसी को उठाकर खाते थे, और किसी को बात पता नहीं था, किसी को नहीं, सब चला जाने के बाद खाते छिप करके, किसी को पता नहीं था, महाप्रभु बोले अब देखने ये उसी को खाता था। बोले केवल इतना नहीं, बोले आप जितने भक्त है कई बार आपका झूठा खा चुका है उन्होंने, लेकिन आपको किसी को पता नहीं। कई बार आपका झूठा उन्होंने खाया है लेकिन आपको पता ही नहीं। अरे आप क्या क्या कहूं, आप तो सब बड़े भक्त है। एक भक्त है आप जानते होंगे जो झाड़ू ठाकुर, झाड़ू ठाकुर हम जानते, वो तो बहुत विनम्र है। झाड़ू ठाकुर होते ना मंत्र मंत्र समझते ना, झाड़ूदार होते हैं, वो झाड़ूदार थे तो सब हीन दृष्टि में देखते हैं, इसे जात में भी हीन है और कर्म में भी हीन है, झाड़ूदार है। लेकिन थे बड़े वैष्णव, थे बड़े वैष्णव, बड़े विनम्र उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान के गुरु भगवान के भक्त थे, तो इसलिए लोग उनको सम्मान करते थे, लेकिन पास में नहीं बैठाते थे। कोई भंडार फंड महंतर है यार, आप कैसे बैठेगा हमारे साथ में, तो महंतर हिसाब से अपना ट्रीटमेंट उनको करते थे। लेकिन वो अपने भक्त थे, अपने भजन करते थे, अपने परिवार लेकर के अपना अलग से रहते थे गाँव में। तो काली कृष्णा समझे मैं तो सबका झूठन तो खा, लेकिन ये झाड़ू ठाकुर का नहीं खा पा रहा हूँ, क्योंकि वो भंडारे में आते ही नहीं, भंडारे में आते ही नहीं। भंडारा खाने के बाद वो आते हैं झाड़ू फाड़ू देने के लिए आते हैं, वो तो खाते नहीं, उनका पता लगता ही नहीं। उनका मन में बड़ा शंका रहा, क्या करे, अरे उनका झूठन तो नहीं हुआ, बाकी सबको तो हो लिया, उनके नहीं पाया झाड़ू ठाकुर, और वो तो कभी खाते ही नहीं और मांगने से तो कभी देंगे नहीं। तो मन में एक दिन विचार किए, विचार करके उन्होंने, अब गर्मी का सीजन था, आम का सीजन था, आम होता ना मार्च महीने में हो जाता ना, तो मार्च मार्च अप्रैल हाँ मई जून तक, अच्छा जो भी हो, तो उस आम का सीजन था। और बेचारे झाड़ू ठाकुर तो गरीब थे, महंतर होते हैं उनको इतना पैसा थोड़ी मिलता कहीं, तो आम खरीद कर अपने बच्चे को खिला नहीं सकते थे, और गरीब थे, उनका अपना बगीचा तो था नहीं, बाजार से आम खरीद करके ला करके अपने परिवार को खिला नहीं सकते। उनके जो बाल बच्चे थे सब चाहते थे पापा इतने सब आम खाते, आम खाएंगे नहीं बेटा क्या करूँ, अब कोई मिलेगा तो कहीं देखें खिला नहीं पाते। तो उन्होंने हमेशा जाते थे उनको सेवा करने का, कैसे झूठन खाने का मौका ढूंढते थे। पता लगा है कि उनका घर में उनके बेटा बेटी रो रहे हैं, एक दिन पापा आम नहीं लाता, और वो दुखी करते मैं पैसा तो नहीं आम कहाँ से लाऊँ, हमारे तो आम नहीं है, आम के बाजार रेट में कभी देखता हूँ पैसा जुटाता हूँ, हो जाएगा एक आध महीना में एक आध किलो ले आऊँगा, आप खा लेंगे सब। तो इसे सुन लिया उन्होंने, तो उन्होंने अपने संचय से पैसा निकाल करके 5 किलो बढ़िया बढ़िया आम, केसरी आम, इतने हाई क्वालिटी का आम बिल्कुल पके हुए खरीद करके लेकर के आया उनका घर में। एक दिन आया, बोला झाड़ू ठाकुर जी प्रणाम, ना क्या ना ऐसे में गया था किसी ने मुझे दिया, मैं बोला इतने क्या करूं, हम तो भाते रहते हैं, आपको देने के लिए आ गए, आप ले लीजिए एक बार, हम आप खाए नहीं होंगे, हम ले लीजिए। तो उनको तो मन में बहुत इच्छा था, घर में बच्चे रो रहे थे, उनको भी इच्छा था खाने के लिए, लेकिन भक्त नम्र है, सबसे बोले नहीं नहीं आप क्यों लाए, इसे हमारे लिए मैं आपसे भेंट लेने के योग्य नहीं हूँ, इसे मना के लिए प्रणाम किए दोनों को, प्रणाम करके बैठे, और बोले लेगा नहीं, इसे बैठ करके थोड़ा बातचीत की, इष्ट गोष्ठी की। इधर उधर से गौरांग महाप्रभु के बात चलने लगा, इधर से बात चलने लगा, इससे चलने लगा, चल चल और पास रखे थे, बोले देखो मैं क्या लेकर जाऊँ, आपके लिए लाया था, अब रख लीजिए, देख लेना खा लेना, कोई बात नहीं, दे देना कोई बात नहीं, मैं इतने लेकर आया हूँ क्या लेकर जाऊँ। बड़े घंटे दो घंटे बातचीत करते करते उनको नॉर्मल करके उनके पास छोड़ करके गए, वो उनको विदा करने के लिए, क्योंकि इतने प्रसन्न हो गए कि मैं चाहता था आम खाने के लिए, आम का सीजन ही जा रहा है, एक दिन आम नहीं खा पाया, घरे बच्चे परिवार वाले रो रहे हैं, लेकिन आज आम लेकर आया, भगवान की किसे कृपा है, मुझे इतने आम बढ़िया बढ़िया आम इतने मिला और इतने कृपा करके लाए। तो उनको छोड़ने के लिए कई दूर तक उनके पीछे आया, आप इतने कृपालु है मुझे ला कर इतने बढ़िया आम दिए। तो बातचीत करके आया, तो फिर अंत में बोला ठीक है अब जाइए मैं जा रहा हूँ, वो जैसे निकल कर गए खुशी में चले गए आम खाने के लिए जल्दी। तो जहाँ जहाँ उनका चरण पड़ता था चप्पल भी नहीं पहनते थे, सारे जा जाकर उनके चरण थोली को ला कर सर में लगाए और चले जाते उनके पीछे पीछे चुपचाप, और फिर चले गए क्योंकि बड़े खुशी में गए कि मन में तो आम खाने का बड़ा इच्छा था, और ऊपर से इतना मना कर रहे थे लेकिन इच्छा तो बहुत था मन में, और आम का स्मेल भी ऐसा आ रहा था, बोले उनका पानी टपक रहा था मुँह से। अब झाड़ू काली कृष्ण दास ने उनको विदा करके चुप से घूम कर बोले जा रहा हूँ, आधा किलोमीटर इस चले गए रास्ते में, तो विदा करके आए, जा करके एक आध किलोमीटर घूम कर फिर कर आए, उनको तो प्रोजेक्ट कुछ और था। आप घूम करके आए, आ करके उनके घर के पीछे एक झाड़ी था, वो झाड़ी में छिप करके बैठे। आप घर का आवाज जंगला खुला है, उनके पीछे झाड़ी था, ऐसे कहना उसे छिप कर बैठे हुए, और क्या नहीं बैठे थे, तो उनके पूरे परिवार घेर गए। आम को लेकर बोला, अरे भोग तो लगाने दो यार, धोधा करके जैसे जैसे मार ताली उठा थाली यार, क्या टाइम अब यहाँ में सिंगार है, आज आम मिलाए खाएं। आप ला करके बैठ गए, चारों तरफ पूरे सपरिवार बैठ करके, इतने बढ़िया क्वालिटी का आम था, सब खाए, मैंने खा करके पूरा छिलका तक चुबा जाते थे तो बच्चे लोग। हाँ अब लेकिन आम संख्या ज़्यादा था परिमाण, तो खाए पेट भर के खाए, खा गए लास्ट, पहले पहले तो सब छिलका फिलका खा जाते थे, लास्ट में धीरे धीरे वो छिलका बचने लगा, और कुछ नहीं लगा, मैंने पेट भर गया सबका, सब मन भर के पेट भर के आम खाए उस दिन। खा करके पूरे टोकरी में जितने सारे गुठली और छिलका जो था सारे सारे रखे, बोले ठेलो डुबो उठा तो फेंक दो, फिर वो जाकर के पीछे जानते थे वही झाड़ी में फेंकेंगे, वो पीछे जगह झाड़ी में फेंक कर, जैसे फेंक कर आगे बड़े खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं कि आप इतने बड़े आम आज खिलाए, बड़े अच्छे प्रभु जी हैं, और वो प्रभु जी सारे सुन रहे थे। पीछे जैसे छिलका गुठली सब फेंक करके आए, आ जाने के बाद वो धीरे धीरे जाकर सारे छिलका को गुठली को ला करके सब चूसने लगे, सब चाट रहे, उनके सपरिवार बच्चे बीबी और सभी खाए थे, सभी का बैठे बैठे बोले दोपहर तक उसी को चूसते चूसते, बोले आज मेरा पूरा हुआ प्रोजेक्ट है। तो कम से कम उनका भी उस मेहनतर उस झाड़ू ठाकुर का भी झूठा मैंने खा लिया। बोले ये बात तो किसी को भी नहीं पता, बोले झाड़ू ठाकुर ही पता नहीं, बोले आप लोग भी पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। भगवान बोले, बोले मुझे तो, मैं तो जानता हूँ कौन क्या कर रहा है, हम भले कितने छिपा करके दिखा कर, हम तो दिखा कर हमसे भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण अब सब चले जाने के बाद भर को सामने आ गया शुद्ध भक्त एक बार, पद्मासन बद्ध पद्मासन, पब्लिक नहीं है तो ऐसे ही, तो हम तो देखावटी, लेकिन उनका देखावटी था नहीं। तो भगवान अंतर्जामी सभी जानते हैं कौन कैसे क्या करते हैं, क्योंकि बाहर तो देखते नहीं, वो तो अंदर ही बैठे हैं। और ये काली कृष्णदास के भाव को भगवान चैतन्य महाप्रभु अच्छी तरह से जानते थे। जिस दिन उन्होंने इसी झाड़ू ठाकुर के झूठन खाया आम को, तो भगवान भी पुरी में रो पड़े थे। वो तो बंगाल में वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ये काम चल रहा था, महाप्रभु भक्त का विनम्रता, उनके इस प्रकार प्रयास देखकर वहां रो पड़े थे, लेकिन किसको तो बोलेंगे नहीं, इतने भाव थे को देख रहे थे साक्षात मेरे भक्त कितने विनम्र है। क्योंकि भगवान कहते थे कि भक्ति में प्रगति करने के लिए टनिक होता है, टनिक जानता ना, जैसे हम टनिक खाते हैं, कभी हेल्थ डाउन हो जाता है, थोड़ा हेल्दी होने के लिए तंदुरुस्त होने के लिए रसायन टनिक खाते हैं, तो इसे भक्ति का भी कभी दुबले पतला भक्ति हो जाता, दुर्बल हो जाता है भक्ति में, भक्ति थोड़ा कम हो गया तो टनिक खाने से भक्ति फिर तंदुरुस्त हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पुष्ट हो जाएगा भक्ति। तो भक्ति के पुष्ट होने का टनिक क्या है, बोलते तीन टनिक है, तीन पावरफुल टर्निंग भक्ति की पुष्ट करने के लिए बढ़ाने के लिए है। बोले भक्त पद धुली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीनी महाबल, ये तीन जो है महाबल है भक्ति बढ़ाने के लिए। एक है भक्त के चरण रज, एक है भक्त के चरण धोवन जल, और तीसरा है उनके झूठन भुक्त अवशेष। बोले ये तीन जो है वो तीन भक्ति को पोषण करने के लिए हाई टनिक है, पावरफुल टनिक, और वो तीनों में पूरा पूरा तीन से बन करते थे। कोई पीछे पीछे जाकर चरण धुली तो ले ही लेते थे, अब झूठन तो खाना तो उनका डेली की काम था, डेली का काम था, सारे भंडारे पहुंच जाते थे और लास्ट तक सर्विस करके लास्ट में चुपचाप कुत्ते के साथ खाते थे बैठ कर, अब डस्टबिन से उठाकर खाते, किसी को नहीं पूछने का जरूरत नहीं, कोई देखता नहीं, तो सब चले जाते काम इसे करके। तो ये भाव जब सबके सामने बताए, बोले ये गुण के कारण आज यही एकमात्र व्यक्ति है, भक्त है, जो मेरा चरण धवन जल पब्लिक में पीने के लिए अधिकार प्राप्त किया। आप लोग नहीं जानते, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोला, मैं जानता हूं उनको। कालिदास बैठे थे, बिल्कुल रो रहे थे बैठ कर, बोले क्या मेरा पोल खोल दिया है सारे। अभी तक तो किसी को नहीं बताया था, मैंने किसी को बता भी नहीं था, लेकिन भगवान ने स्वयं बोल दिए, क्योंकि भगवान को भक्तों के बात कहने के लिए बड़े मजा आता है। बहुत खुश होते हैं। भगवान जो भक्तों की गाथा कहते हैं तो उनको बड़ा प्रसन्न होता है। भक्त को जितने भगवान की कथा कहने में प्रसन्न आता है, भगवान को भी भक्त कथा कहने से इतना पसंद आता है, पंचमुख हो जाता है। तो इसे काले कृष्ण ठाकुर का गुण वर्णन, साक्षात श्रीमन महाप्रभु आपने श्री मुख कमल में किए, भरी सभा में, भरी पब्लिक के सामने किए, तभी सबका मतलब बाप रे बाप ऐसा, हाँ ऐसा, तभी तो मैं कुछ नहीं बोला सबके सामने, जन्मदिन प्रिया आप में किसी ऐसा हिम्मत है, क्या कहें, कोई किसे कहा है ना, हम तो फर्स्ट बैच में बैठे खाने वाले, सेकंड बैच तक कोई टिकता नहीं, मेरे रुकता नहीं, हो क्या पानी सब्जी खत्म ना हो जाए, क्या पता। तो इसलिए हम तो पहली लाइन में बैठते हैं। अब ये देखिए लिए भाव है, उन्होंने इसी काम करने के लिए ज्यादा समय मंगलार्थ में नहीं आ पाता था, ज्यादा भजन बैठ कर कर नहीं पाता था, बाकी सारे भक्ति के जो साधन क्रिया इतने नहीं कर पाता था, लेकिन उनके साधन जीवन का ही था कि मैं भक्तों की सेवा करूं और उनके जो तीन, किसी का पद जल, किसी का पद धूलि, भक्तावश्य से वहीं पाऊं, बस आपने जीवन में यही लक्ष्य लिए थे उन्होंने और इसी के लिए चले थे, उन्होंने चलते थे सेवा करके और इस प्रकार प्राप्त करते, उनका मन में इच्छा था और उसको इतने कायदा से करते थे, इतनी बढ़िया से वो करते थे कि किसी को नहीं पता चलता, अभी तक नहीं पता था। अगर भगवान नहीं बताते तो किसी को पता नहीं चला था, स्ट्रेंज। वो तो भगवान के चरणादों को पी लिया, इसलिए सबके मन में ये बड़े आशंका हुआ, तो इसलिए उन्होंने सब ने पूछे तो बोले, नहीं तो नहीं पूछते तो भगवान भी नहीं बताते, भगवान जानते हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा मैं बोलूंगा तो। लेकिन सारे चाहते हैं ये क्या रहस्य है बताओ, आप तो चरण छूने छू देने से फास्टिंग करते एक दिन और बढ़िया से फिस्ट खा रहे हैं, तो तीन तीन बार पी लिया हमके सामने। बोले इसलिए मेरे चरणादक पीने का केवल अधिकार होने का है और किसी का नहीं आप लोग का, क्यों, क्योंकि उन्होंने सारे भक्तों का झुटन खा चुका है, यहां तक एक मेहंतर झाड़ू ठाकुर जो जिसको अब देखने से बोलते हैं मेहंतर है, बोले उनका भी झुटन, उनके उनका नहीं उनके पत्नी का, उनके बाल बच्चे बेटा बेटी का भी चूस चूस कर फेंक दिए, उसको भी खाया, आप जिसको सोच भी नहीं सकते। बोले इसीलिए ये ऐसे अधिकारी है कि मेरे साक्षात चरण धोने पीने का यही एकमात्र अधिकार, ये है व्यक्ति की पावा। तो भगवत कृपा पाना, भगवत भक्ति में बढ़ने के लिए क्या टेक्निक, अभी आप समझ सकते होंगे, है ना। नहीं हम इतने मोटे कंठी, अब 5 किलो वजन के माला और पाट वस्त्र के बिडब्याग और सीधा सड़क 250 ग्राम के तिलक के तिलक, छोटी तो भी इस साइज वाला ऐसा रख करके करके करने से भगवत कृपा नहीं पा सकते। अगर भगवत कृपा के भाजन होना चाहते हैं तो कोई एडवर्टाइजमेंट करना जरूरत नहीं, कोई देखावटी करना जरूरत नहीं, ये है भगवत कृपा के रहस्य। उन्होंने पाया और भगवान ने खुद बोले और देखा, बोले ये है देखिए, इसीलिए एकमात्र भक्त ये है काले कृष्णदास। बोले वो भी केवल ऐसा करते नहीं, वो पहले जन्म में मेरा निज जन्म था, ओ द्वादश गोपाल में से एक है, बाकी आप लोग कर ही नहीं सकते हैं, वही हैं जो मेरे निज जन, जो ऐसे इतने नीच हो सकता है, कोई अच्छे वक्त होकर माने अच्छे खासे परिवार के थे काले कृष्णदास, अच्छे खासे परिवार के थे, बड़े मान्य गण्य भक्त माने जाते थे महाप्रभु के निकट जाने पर भी, लेकिन आपने को इतने नीच, इतने छिपा करके हटा कर रखते थे कि भक्त लोग उनको जानते ना, हम जानते हैं भंडारा मिल जाता है, लेकिन इतना नहीं जानते हैं, जनाने नहीं देते थे किसको, लेकिन भले वो नहीं जनाने देंगे, भले कोई पब्लिक ना जाने, लेकिन पब्लिक जानने से हमारा क्या हो जाता है, जानने वाला तो जानता है। श्रीमन महाप्रभु भली प्रकार से जानते थे पुरी में रह करके, उनका कार्य कलाप टीट बीट सारे उनको पता था, वो बाकी को पता नहीं, इससे क्या फर्क पड़ जाता है। तो हम अगर इतने नम्र विनम्र करके ये सब करते हैं तो राधा राधिका रमण तो जान ही लेंगे, वो जानेंगे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आप कितने हमें अहंकार सामने बैठा कर करते हैं वो भी जानते हैं, वो क्या क्या करते नहीं करते सारे पता रहता है हमको। ऐसा बात नहीं कि उनके छिपा जाएगा कुछ, उनसे छिपा नहीं सकते, तो जानते हैं। तो जो काम हम सचमुच करते हैं उन पर इसी हिसाब से प्रतिदान देते हैं। आज काली कृष्णदास को महाप्रभु स्वचरण जल दे करके सभी के सामने सभी के आंख खोल दिए, सबके आंख खोल दिए किसे महान चरित्र है। तो ऐसे भक्त काली कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत में अंतलीला में षोडश अध्याय में उनके चरित्र वर्णन आता है, कैसे महाभागवत थे उन्होंने। तो यद्यपि और एक काला कृष्णदास का नाम आता है चैतन्य लीला में, जो महाप्रभु के साथ गए थे साउथ इंडिया, और दोनों ही नित्यानंद पार्षद थे। वो भी नित्यानंद प्रभु के फॉलोअर थे, ये भी नित्यानंद प्रभु के फॉलोअर थे। ये जो काला कृष्ण झूठन खान वाले वो भी नित्यानंद प्रभु के अभिन्न पार्षद थे, किंतु द्वादश गोपाल सब बलराम के साथ घूमने वाले नित्यानंद के पार्षद हैं, और वो भी नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। लेकिन वो साक्षात भगवान की सेवा मिला उनको, साक्षात भगवान की अंग सेवा करना इतना दिन तक, अरे पैदल में चल करके पुरी से केरला तक पहुंचेंगे, रास्ता में कोई दो महीना चार महीना के एक जगह में रुके भी है, कम से कम डेढ़ दो साल, तो डेढ़ दो साल पर्सनल सर्वेंट अंग सेवक के रूप में रहा, लेकिन फिर भी माया फंसा दिया उनको, छोड़कर चला गया था, महाप्रभु छोड़कर चला गया, यही से माया फंसा दी। लेकिन ये देखिए, भगवान को तो पास रहता नहीं था ना, कोई भक्तों के साथ करता था, लेकिन इतने चलाक है, सबके झूठन खाता था, सबके चरण दर्ज लेता था। अब इसके चलते आज साक्षात श्री भगवान के चरणादों के अधिकारी बना, कोई नहीं बन पाए, वही की बात ये। तो इस प्रकार से काला कृष्णदास की चरित में जो सही में जो भक्ति का गुण, भक्ति की महिमा, भक्ति के रहस्य ये प्रकट करते हो अपने आचरण के द्वारा। तो ऐसे 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 भक्तों के चरित सुनने से तो हमको लगता है हम भी कुछ करना चाहिए। अब छिपा करके नहीं, दिखा करके तो सही। हम छिपा कर बोले महाप्रभु जानेंगे नहीं जानेंगे, कहीं कोई भक्त तो जाने से देखा सुनते, हम देख मैं भी कर रहा हूँ ऐसा, मैं भी डस्टबिन से एक पत्तल एक दिन उठाया था। अब नहीं खाओ कम से उठा कर तो दिखाओ, कैमरा में कोई फोटो तो उठा दे, डस्टबिन के सामने खड़ा है। कुछ ऐसा भी कर दे। तो ऐसे केवल भगवान के भक्त होना, कहते हैं कि भक्ति कठिन है, कठिन नहीं आसान है, जो अपने आप को सरल और विनम्र करेगा उनके लिए बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। भगवान कोई ज्यादा चाहते नहीं है, लेकिन भगवान को यही चाहते हैं कि निरहंकार हो जाओ, अभिमान अहमता उसको छोड़ो, दया और क्षमा के भूषण करके रहो, अपने आप भक्ति हो जाएगा, अपने आप आपसे हो जाएगा, आपको कुछ ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, हो ही जाएगा अपने से। तो ऐसे 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 भक्तों जिन्होंने मैं जैसे काल बता रहा था भक्त संघ के महिमा श्री रूप गोस्वामी ने वर्णना किए हैं। रूप गोस्वामी ने कहे कि जो कृष्ण नाम उच्चारण करता है तो उनको मन के द्वारा आदर करना चाहिए, जो और नियम पूर्वक भजन आदि करता है उनको और भली प्रकार से साष्टांग पंचांग प्रणाम आदि करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन सेवा और संगत उनका करना चाहिए। निंदादि शून्य हृदयं ईप्सित संग लब्ध्वा, जिन भक्तों का हृदय में किसी के प्रति निंदा के भाव नहीं है, शून्य है, किसी को निंदा नहीं कर, किसी को बुराई नहीं करना चाहते हैं मन से भी हृदय से, तो उन्हीं भक्तों का सेवा और संग लाभ करने के ललायत होना चाहिए। हम सुनते हैं भक्त युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज को भागवत में हरिदास वर्य के नाम भी बुला गया है। भागवत में तीन भक्तों को हरिदास वर्य कहा गया, एक उद्धव जी, एक युधिष्ठिर महाराज, एक गिरिराज गोवर्धन। ये तीनों को भागवत में हरिदास हरिदास करके स्वीकार किया गया और हरिदासों में श्रेष्ठ करके गोवर्धन को माना गया, हरिदास वर्ज्य, हरिदासों में श्रेष्ठ। लेकिन ये तीनों हरि के दास हैं, जो हरि के दास हैं। और उनको तो युधिष्ठिर महाराज को जानते थे, प्रसिद्ध है उनके नाम, अजात शत्रु, अजात शत्रु थे वो, जानते ना अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ है जिनका शत्रु जन्म ही नहीं हुए, जात नहीं हुए जिसका शत्रु, उनका कोई शत्रु है ही नहीं, जिनका शत्रु जन्म नहीं है, अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज। आप सभी जानते हैं महाभारत में उनके सामने 11 अक्षौहिणी एक फट से लेकर खड़े थे मारने के लिए, है ना। नहीं जरे उनके शत्रु जन्म ही नहीं है, उनको 11 अक्षौहिणी सेना उनके विपक्ष में, युधिष्ठिर महाराज के सामने खड़े थे ना कौरव वाहिनी, और उनके शत्रु तो जन्म नहीं हुए, कैसे शत्रु, जो उनके सामने खड़े शत्रु तो थे ना, मित्र थोड़ी थे, कैसे इतने शत्रु आ गए। भले हजारों लाखों शत्रु हो जाए लेकिन फिर भी हजार शत्रु क्यों, उन्होंने अपने मन से उनको शत्रु नहीं माने। युधिष्ठिर महाराज ने अपने जीवन काल में दुर्योधन को दुर्योधन भी नहीं बोले हैं, कभी सामने आए तो बोले सुयोधन, सुयोधन बोलते थे, बोले दो शब्द उच्चारण भी नहीं करते थे उनके लिए, बोले ना दो माने खराब, सु माने अच्छा, बोले सुयोधन है। सारा दुनिया बोलता था दुर्योधन, बोलते ना ये सुयोधन है। किसी के अंदर दोष देख नहीं सकते, किसी के बुराई कर ही नहीं सकते, किसी को वो मेरा शत्रु है करके स्वीकार कर ही नहीं सकते, फिर भी ऐसे व्यक्तित्व के सामने जब इतने भारी संख्या में लाखों संख्या में लोगों को मारने के लिए उनके सामने शत्रु बनकर खड़े हो गए। तो इसलिए ये मत जानिए कि किसी का कोई विरोध करता है, किसी का कोई क्रिटिसाइज करता है, किसी का कोई निंदा करता है तो मतलब वो ऐसा होगा, ऐसे नहीं समझा जा सकता। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को उदाहरण से जानते हैं, युधिष्ठिर महाराज के सामने 11 अक्षौणी सेना उनको मारने के लिए खड़े थे लेकिन फिर भी सभी कहते हैं अजात शत्रु, उनके शत्रु जन्म नहीं, क्योंकि ये सभी को अपना शत्रु करके नहीं मानते थे, दुख करते थे, बोले क्यों मेरे मारने के लिए, तुम्हें मार ही देते, लेकिन सचमुच उनको शत्रु करके नहीं मानते थे। तो ऐसे ऐसे भक्त होते हैं, तो ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र को अगर हम सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारे मन में कभी उत्साह आता है, हम भी कभी ऐसा कर सकते हैं क्या, क्योंकि भक्त तो हमारे जैसे होते हैं, ये भी एक व्यक्ति है, हाथ पैर उनका भी होता है, वो भी खाता है, ऐसे रहता है हमारे साथ, खाता पीता सोता रहता है, जब वो ऐसा कर सकता है व्हाई नॉट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। अगर आप ऐसा सोचकर करेंगे तो हम सभी का ये हुड़बक जीवन भी सफल हो सकता, लायक बन सकता। तो इसीलिए भक्तों के संग का बड़े आवश्यकता है। भक्त के संग करने के लिए मन में इच्छा कैसे आएगा, तो उनके एडवर्टाइजमेंट होने से। तो इसीलिए वैष्णव गुणगान सुनिले पवित्र कान सुनिए अच्छे साधु गुरु मुखे, कि भक्तों का महिमा, भक्तों का ऐसे कार्यकलाप की वर्णन अगर सुनते हैं तो हमारे हृदय पवित्र होता है, हमारे मन पवित्र होता है, हम शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे साधु संतल को ऐसे कहते हैं कि भक्त चरित का ये महिमा है, ये भक्त चरित का महिमा। मैं तो देखा हूं कई भक्त हैं, संप्रदाय वो भक्तमाली हैं, वो केवल भक्तमाल पढ़ पढ़ करके इतने उच्च कोटि को चले जा चुके हैं, बाकी शास्त्र आदि नहीं पढ़े उन्होंने, केवल भक्तमाल, केवल भक्त के चरित को अवगाहन करते करते भक्त चरित में इतने रचे पचे हैं कि इतने ऊपर उठ गए, इतने बड़े हो गए, बड़े बड़े भक्त हैं केवल भक्त चरित से, भक्त सेवा के माध्यम से। तो इसे इसे जो भक्ति करने के लिए सही तरीका से प्रयास कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके गुणगान हम क्या करें, उनको गुणगान तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु बोला ना पब्लिक के सामने कल्याण कृष्णदास के, वो नहीं चाहते थे, वो बेचारे छिप बैठे थे, लेकिन भगवान ने सबके सामने उनको गुणगान किए। ये जरूरी है, करने से सबको पता चला, अरे ऐसा है क्या, तो हम भी करते यार, मैं भी सोचा था एक दिन खाने के लिए, लेकिन शर्म लगा मुझे, लेकिन देखो ये उनको शर्म क्या लगा, तो कुत्ता के साथ खाता था, कुत्ता के साथ शर्म क्या करने का वो कोई बोल लोग नहीं होते थे, वो जिस पोजीशन में जाता था खाने के लिए, सब चले जाएंगे बिल्कुल तभी जाते थे, कितने भाव था। और कोई मन में अहंकार का अभिमान की दिखावटी कोई देखे मैं भी ऐसा करता हूँ ऐसा कुछ नहीं। इस प्रकार के जो भक्ति होता है, जो भगवान को आकर्षण करने वाले जो गुण होता है, तो इस प्रकार गुण होता है। तो इस प्रकार गुणों में से आज काली कृष्णदास जो थे नित्यानंद प्रभु के पार्षद, वो इस प्रकार से अपने गुण और क्रियाकलाप आचरण के भगवान श्रीमान महाप्रभु के ऐसे आकर्षण किए ताकि उनके चरणादुख के पान का अधिकारी बने और भगवान उनके गुणगान सभी के सामने किए। तो ऐसे आज मैंने सुने, सुबह अनाउंसमेंट सुना कि आपके इस मंदिर के अध्यक्ष रुक्मिणी कृष्ण प्रभु हैं, उनका भी आज आविर्भाव तिथि है। ऐसे मैं ज़्यादा उनके बारे में जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं इस मंदिर का भक्त तो है नहीं ना ज़्यादा, इधर कभी कभी आता जाता रहता हूँ आजकल। लेकिन आप लोग सब उनके साथ में और जब से ज्वाइन किए होंगे तब से आप लोग कई सीनियर भी होंगे उनसे, कई देखे होंगे किस प्रकार करते क्या करते। लेकिन मैं कभी कभी आता हूँ, कभी कभी मैनेजमेंट इश्यू से, कभी इसी प्रकार से, तब देखता हूँ कई लोग उनके बारे में क्रिटिसिज्म में सुना हूँ, उनके गुण नहीं सुना हूँ कि अरे ऐसे हैं, बहुत ऐसे सुना हूँ कई लोगों से, यहाँ के लोगों से कि अरे पता नहीं हमेशा पकड़ा हुआ छोड़ता नहीं, ऐसे कर ऐसे क्रिटिसिज्म खूब सुना उनके बारे में। लेकिन जब मैं नज़दीक आकर देखा कि भले कितने उनके बारे में क्रिटिसिज्म करे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जैसे लाखों व्यक्ति उनके सामने उनको शत्रु बनकर खड़े थे, वो उनको शत्रु करके नहीं मानते थे, एवं देखा कि वो किसी को शत्रु करके नहीं मानते। आप नहीं मानते, भले उनको कोई दुनिया किस नज़र से देखे किस नज़र, लेकिन उनके दृष्टि दूसरी प्रकार से है। और वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनके पोस्ट दिया गया है, अधिकार उनको इस प्रकार काम में रखा गया है। जब काम में दिया गया है, उनके दायित्व है, तो क्या करेंगे, न चाहते हुए उस दायित्व को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे काम करना पड़ेगा, कुछ नियम में अड़कर रहना पड़ेगा। ये उनकी इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि उनको अथॉरिटी ने उनको ये काम दिए हैं करने के लिए, उनकी अपेक्षा रहता है, तो इसलिए वो करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इस प्रकार व्यक्तित्व के उनकी भावना को नहीं समझ करके उनको निंदा करने जाते हैं, तो इसी में हमारी हानि होता है, हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग भक्तों के मेल में रह करके किसी प्रकार एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी मतलब आदर्श, आपने साधना में जो प्रातकालीन साधना और बाकी पाठ पूजा क्लास जो भी सब क्रिया मुद्रा है, खान पान हर प्रकार से, व्यवहार अधिकार से, जिस प्रकार से आदर्शता दिखाते हैं, जिस प्रकार से आचरण करते हैं, जिस प्रकार बातचीत व्यवहार आदि करते हैं, इससे लोग करना कर सकते हैं, समझा सकते हैं किस प्रकार है, कि अगर इस प्रकार हम करते तो हम भी कहाँ पहुँच जाते। लेकिन इनको ऐसे थैंकलेस टास्क, जो मैनेजमेंट काम वो कोई प्रसन्न नहीं, एक दो काम है जिसमें सभी को प्रसन्न करना संभव ही नहीं है, एक है प्रसाद बनाना और एक ही मैनेजमेंट करना, नेवर एवर पॉसिबल कि आप सबको कुछ कर देंगे, हो ही नहीं सकता। आप प्रसाद बढ़िया से फिस्ट आज हमें देखा कि गरम गरम पकौड़े और पुदीना के चटनी सूप, बताओ मैं तो कोई सोच भी नहीं सकता कि रामचंद्र लोग ऐसे खाते चकाचक। लेकिन इसके लेकर कोई बोलते हैं तेल है से, बताओ वो तो नुक्स ढूंढने वाला तो ढूंढेगा ही। अरे हम पब्लिक तो भगवान राम में भी गुण दोष ढूंढे, सीता माता को भी दोष ढूंढे, कृष्ण में दोष ढूंढे, तो ये साधारण से कैसे ढूंढे, है ना। नहीं दोष देखने में, दोष ढूंढने में तो हम लोग सिद्धहस्त है, ये करते के तो प्रैक्टिस खूब है कि इसे भी भगवान तक दोष निकाल देंगे। हाँ, लेकिन जब गुण दृष्टा बनते हैं तब पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं वो कहाँ पे है। गुण की अगर आप चर्चा करें तो नाम भी महाराज ने उनको इसी दिए रुक्मिणी कृष्ण। रुक्मिणी जी, हम जो भगवत चरित पाठ करते हैं, वो एक ही स्त्री थी जिन्होंने भगवान को देखे बिना, उनका फोटो तो नहीं देखी थी उन्होंने ना, तो कैमरा थे, फोटो भी नहीं देखी थी, केवल दूर में थी, वो द्वारका में, वो नागपुर में थी, इतने दूर में रह करके भगवान के बारे में सुनी, केवल सुन करके ऐसे कड़ा निर्णय ली कि चाहे मुझे सैकड़ों बार मर करके जन्म लेना पड़े, तो इस शरीर में, इस मन से, तन से, मन से केवल श्री कृष्ण चरण के अलावा और किसी को मैं सेवक सेविका नहीं बन सकता हूं, उन्हीं के चिर नित्य दासी रहूंगा, उन्हीं के नित्य किंकरी, ये मन में डिसीजन ले लिए। तो जो ऐसे कृष्ण के बारे में सुन करके और संपूर्ण जीवन कृष्ण और कृष्ण भक्तों के लिए नियोजित कर दे, इस प्रकार के जो कड़ी डिसीजन है, ऐसे डिसीजन लेना, ये डिसीजन हम देखते हैं। आपने जो था पद पदवी नौकरी आदि सब छोड़ करके जब कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण भक्ति के बारे में सुने, तब सीधा आ गए कृष्ण की संस्था में। ये एक प्रामाणिक संस्था है जिसमें कृष्ण की भक्ति किया जाता है, कराया जाता है, बस दैट्स इट। सब कुछ छोड़ करके इसमें एक निष्ठी, एक एकाग्र भाव से इसमें आ जाना, ये जो गुण है, ये रुक्मिणी का ही था। उन्होंने भागवत प्रमाण है, भागवत में रुक्मिणी जी का लव लेटर का प्रिंट आउट है। सबसे पहले प्रेम पत्र रुक्मिणी ने लिखा था, और इस पत्र को वो ब्राह्मण ने लेकर जब उनको देने वाले था, वो भगवान कृष्णदास ने पढ़ा, भगवान सुने रुक्मिणी ने लेटर लिखा है, लेटर खोलकर ब्राह्मण दिया, बोले आपके लिए लेकर पढ़ो। भगवान ने लिए लेटर, इतने अभिभूत हो गए, धार धार आंसू बन लगा, पढ़ना गया, बोले ना मेरे से पढ़ा नहीं जाता, लेटर लेके भीग जाएगा, लेटर पढ़ नहीं सकता, आप पढ़ के सुना दो, मैं तो आंख से आंसू बह रहे, पढ़ नहीं सकता आंसू। वो ब्राह्मण ने पढ़ा, ब्राह्मण ने लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ना खत्म नहीं हुआ, भगवान बोले चलो चलो और लेट नहीं करना, अभी चलना। लेटर खत्म होते ही निकल पड़े, इतने उद्वेग से गए और रुक्मिणी को बचा लेकर के। जब जब भी रुक्मिणी देखा भी नहीं था कृष्ण को, नहीं जानता, केवल सुन करके। तो आजकल हमारे सामने तो कोई उपाय नहीं है, केवल सुन ही सकते हैं, सुन करके इसी प्रकार निर्णय लेना। भगवान के प्रति, भगवान के भक्त प्रति भक्ति की भावना, इस पर निर्णय लेना। ऐसे ऐसे आदर्श चरित जैसे रुक्मिणी महारानी की थी, जैसे कृष्ण को उन्होंने प्राप्ति की थी, जिसने उत्कट भावना थी, इस प्रकार भावना को धारण करना, तो तभी जाकर रुक्मिणी कृष्ण जैसे बन पाते हैं। वो तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु दास हैं, लेकिन हम इसे दासों के दास अगर बन पाए, तो आज आज उनके तिथि में आज उनको, मैं उनको बोला सुमन कंजूसी मत करो, आज कोई आपको मांगे तो कम से कम थोड़ा कृपा दृष्टि करो। ये वन डे यार, उसमें क्या फर्क पड़ जाता है यार, थोड़ा सा। हरे कृष्ण समवेत भक्त वृंद की, गौर हरि भगवान
की जय।